बहुत ही मुश्किल आयात है, समझने के एतबार से नहीं, पढ़ाने के एतबार से। ऐसा लगता है कि किसी मास्टरपीस को अगर आप और खूबसूरत करने की कोशिश करें तो यकीनन वो ख़राब हो जाता है। अपने अल्फाज, मानी, मफहूम के एतबार से बहुत खूबसूरत आयते हैं, और वो आयात जिसमें अल्लाह सुबहाना ताला की ज़ात का जिक्र हो, वैसे ही उसका पढ़ना पढ़ाना मुश्किल लगता है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कि हमें अल्लाह ताला की शान और उसकी ज़ात के बारे में कोई ऐसी बात कहने और सुनने की तौफीक ना दे कि जो वाकई उसको बुरी लगे, और अल्लाह ताला के बारे में जहाँ भी कुरान पाक में या कहीं भी कोई बात आए तो हमारे लिए उसमें यही चीज़ है कि अल्लाह तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद को कहा है। तो आइए शुरू करते हैं, जहाँ तक एक मफहूम है वहाँ तक चल के फिर इंशाल्लाह हम वापस डिस्कशन के लिए पीछे पलटेंगे। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। मसलु नूरी ही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, इसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ताक हो उसमें चराग हो। तसव्वुर मिलाते जाइए, इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ आएगा। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, वो चराग शीशे के एक फानूस में हो। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रीयुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़र्बिया। वो फानूस गोया के एक सितारा है जो मोती की तरह चमक रहा है, जो रोशन किया गया है बरकत वाले जैतून के तेल से, जो ना शर्की है और ना गर्बी है। यकादु ज़ैतुहा युदी उवलव लम तमसस हुनार, करीब है कि इसका तेल रोशन हो जाए अगरचे इसे आग ना भी छुए। नूरुन अला नूर, ये तो नूर ही पर नूर है। यहदिल्लाहु लिनूरिही ही मन यशा, पहुंचा देता है अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है, या रहनुमाई करता है अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है। वयद्रिबुल्लाहु लम्साल लिन्नासी वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और बयान फरमाता है अल्लाह ताला तरह तरह की मिसालें लोगों की हिदायत के लिए, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। पीछे हमने देखा कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ ऐसी चीज़ों का तذکرہ फरमाया था कि जो इंसानों के ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त करने वाली थी। अब यहाँ से अगर आगे आप देखें तो मुनाफिकीन का किस्सा शुरू होने वाला है, क्योंकि इन आयात के फ़ौरन बाद निफाक का टॉपिक चलेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ अल्लाहु कहकर मुनाफिकों की तवज्जो दिलाई कि देखो, तुम जो अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाने की कोशिश करते हो, नए से नए फितने उठाते हो, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी रसूल के नाम पे, कभी अल्लाह के नबी की बीवियों के नाम पे, तो याद रखो कि ये रसूल खुद नहीं आया। लफ्ज़ रसूल ही बताता है कि इसको कोई ना कोई भेजने वाला है, और किसने भेजा है? वो अल्लाह है। कौन सा अल्लाह? अब अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कुछ बातें हैं। यहाँ अल्लाह ताला को नूरु समावाती वलर्द कहा गया, तो ज़रूरत है पहले देखें कि नूर क्या होता है, फिर देखेंगे कि अब यहाँ इस नूर से क्या मुराद है। बस मुफसरीन नाम लिए बग़ैर आपको उनकी नूर की तफसीर बताऊंगी। कहते हैं एक तफसीर के मुताबिक नूर क्या है कि जो खुद अपनी ज़ात से ज़ाहिर हो और रोशन हो, और दूसरी चीज़ों को ज़ाहिर और रोशन करने वाला हो। यानी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो खुद ही चमक रही होती हैं बस, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ चमका रही होती हैं। लेकिन नूर क्या है? जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। बस आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली खुद नहीं चमकती, लेकिन इसकी वजह से बल्ब चमकने लगते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें जो खुद चमकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे चमकीले कपड़े, कोई और ग्लिटर, लेकिन दूसरों को नहीं चमकाती। लेकिन नूर क्या है कि जो खुद भी चमके और दूसरों को भी चमकाए। इसी तरह एक और तफसीर, नूर दरअसल इस कैफियत का नाम है जिसको इंसान की कुव्वते बासिरा पहले महसूस करती है, यानी बसारत की कुव्वत। आप कह सकते हैं कि नूर उस कैफियत का नाम है जिसको पहले इंसान की आंखें महसूस करती हैं, और फिर इसके जरिए से उन तमाम चीजों का इदराक करती हैं जो आंख से देखी जा सकती हैं। अब ये तारीफ है, आप इसको समझ सके तो समझ जाए। फिर आप देखें कि कुरान में भी और हमारी इस्तलाह में भी चांद की रोशनी को नूर की रोशनी कहते हैं और सूरज की रोशनी को नार कहते हैं। चांद को अगर आप देखें तो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। जो लोग थोड़ी सी साइंस जानते हैं वो जानते हैं कि चांद खुद बिल्कुल एक ऐसी है जैसे ये ज़मीन है, बिल्कुल मिट्टी की, लेकिन सूरज इस एंगल से चांद पे पड़ता है कि वो हमें चांद चमकता हुआ दिखता है। तो फिर उस रोशनी को देखें तो नूर वो चीज़ होती है जो अपनी नहीं होती, मोस्तार ली गई होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप सामने लें तो क्या ये सारी तारीफ़ें अल्लाह की ज़ात के लिए फिट होती हैं? बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कि ये सारी मखलूक हैं। अगर जितनी भी चीज़ों का हमने तذکرہ किया और देखा, अगर इनको सामने लें तो अल्लाह की ज़ात को अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द कहने में थोड़ी सी मखलूक की तशबीह आती है। तो लिहाजा अगर हम इस लफ्ज़ अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द को एक तो इस मानी में लेंगे कि अल्लाह मुनव्विरुस समावाती वल अर्द, मुनव्विर का लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं, नाम भी होता है लोगों का, कि अल्लाह ज़मीनों आसमान को मुनव्वर करने वाला है, उनको रोशनी देने वाला है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो सारी कायनात को रोशनी देती है। इससे अगर मफहूम समझें तो बिल्कुल वाज़े मफहूम है कि दुनिया में जहाँ भी कोई रोशनी है, सूरज के अंदर रोशनी है, चाँद के अंदर है, सितारों के है, आज की हमारी आर्टिफिशियल चीज़ों में है, तो इन सारी रोशनाइयों का या इन सारी रोशनियों का जो पीछे सोर्स है ना, वो अल्लाह की ज़ात है। जैसे एक माखिज़ होता है ना बुनियादी तौर पे पानी का, फिर वहाँ से पानी आगे जाता है, फिर और जगह जाता है, तो आप कहते हैं ये बताएं कि बुनियादी तौर पे पानी कहाँ से आ रहा है, वो जगह ढूंढते हैं। तो एक मानी हमें क्या समझ में आया कि अल्लाह की ज़ात से यहाँ कायनात में रोशनी है। आप कह सकते हैं कि अगर अल्लाह ना होता तो कायनात में रोशनी ना होती, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से भी ये चीज़ साबित है कि अल्लाह की ज़ात से इस कायनात के अंदर रोशनी है। ख़ास तौर पे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआओं को आप देखें तो उसमें अक्सर अल्लाह ताला को नूर कहने का, या अल्लाहुम्मा अंत नूरुस समावाती वल अर्द, इसी तरह दुआए नूर में हम पढ़ते हैं जिसके अंदर भी इसी किस्म की बातें हैं। तो हमें पहली चीज़ ये समझ में आ गई कि अल्लाह की ज़ात की वजह से कायनात में रोशनी है। चलिए एक लम्हे के लिए ज़रा इसको महसूस तो करें, अगर अल्लाह की ज़ात इस कायनात को रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होता? खटा टोप अंधेरे, हाथ को हाथ सुझाई ना देता, और बिल्कुल ऐसे लगता कि जैसे हमें रात और दिन का फ़र्क तो छोड़ें, किसी और चीज़ का भी फ़र्क ना पता चले। आजमाना चाहें तो बिल्कुल किसी छोटे से कमरे में जहाँ एक हल्का सा भी सुराख ना हो, वहाँ पे जाके अंधेरे में रात को बंद करके खुद को देखें। अब ये एक आम मानी है। इसी तरह आप दूसरा मानी देखेंगे कि यहाँ नूर से नूरे हिदायत मुराद है, तो हम कह सकते हैं कि अल्लाहु अल्हादी उस समावाती वलर्द, अल्लाह हिदायत देने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है ज़मीन व आसमान को। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने इसकी यही तफसीर की कि अल्लाहु हादियु अहलु समावाती वलर्द, कि अल्लाह ताला कायनात को हिदायत देने वाला। इस सूरत में अगर हम नूर को कहें तो ये हिदायत का नूर क्या है? ये इस्लाम है, अल्लाह को मानना, तौहीद, वहदानियत का इकरार। इसीलिए इसके बरक्स को कुफर कहते हैं, और कुफर अंधेरों में है। हम कुरान पाक में बहुत मकामात पे जुलुमात का लफ्ज़ कुफर के लिए पढ़ते हैं, अंधेरों के लिए पढ़ते हैं। तो लिहाजा अगर अल्लाह ताला किसी को नूरे हिदायत ना दे तो फिर उसका हाल क्या है? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला यूमिनून। पहली बात तो वाज़े हुई कि अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को चमकाने वाला है, रोशनी देने वाला है, और दूसरी बात है कि नूरे हिदायत देने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ जो आप तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे, उसके अल्फाज आपके सामने रखूंगी, और इसको महसूस कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत से अल्लाह ताला की सना करते हुए दिखते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, ए अल्लाह तेरे ही लिए तारीफ़ है, انت نور السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا نور ہے، ومن فیہن ولک الحمد، اور جو کچھ ان کے بیچ ہیں ان کا بھی، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ کافی لمبی دعا ہے، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کو نور کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم 99 نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نام ان نور بھی ہے، روشنی کا مرقہ، اور اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو نور کہا۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، اس کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس بات پہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیا پھر یہاں نہیں دیکھ سکتا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کروایا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب فرق کیا ہے پھر؟ آج نہیں دیکھ سکتے، کل دیکھیں گے۔ تو فرق کیا ہے کہ آج ہماری جو آنکھیں ہیں نا، یہ اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سماعت کو، بصارت کو، ہماری ساری صلاحیتوں کو بڑھا دے گا، کھانے کی، پینے کی، حتیٰ کہ جسم میں خواہشات، جذبے اور جو بھی ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی بڑھ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دے دی جائے گی وہاں، تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ تو چلیے یہ اوپر لگی ہوئی لائٹ کو دیکھیے، کتنی چھوٹی سی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہاں ایک فانوس لگا ہو، آپ فانوس کی طرف نظریں بھر کے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں کو درد ہونے لگتی ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، باہر نکلیں۔ خوب چمکتا ہوا سورج ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کو؟ آج سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ سورج سے جو رویز نکلتی ہیں وہ ہماری آنکھ کے چھوٹے سے کارنیا میں فٹ ہی نہیں آتی، تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ جائیں کہ سورج جو مخلوق ہے، جس کو روشنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملی، تو کیا پھر اس کو نہ دیکھ سکیں؟ تو اللہ کی ذات کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور خاص طور میں تصوف کے نام پہ اس مسئلے کو بہت اچھالا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارے جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ایک خاص مقام پہ جب ولایت کے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اور اللہ کے بیچ کے حجاب اتر جاتے ہیں۔ تو پھر پوچھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ سورۃ اعراف میں ہم پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا کہا گیا؟ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ چاہیں تو ایک تجربہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہلکا سا حجاب ہٹایا اور پہاڑ تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کہا اللہ تعالیٰ آج کے بعد جے نہیں کہوں گا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ صدائے لن ترانی سن کے چپ ہوں میں فرقت کا مارا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تقاضوں کی اب جرت ہی نہیں ہے، کہ اللہ نے جب موسیٰ کو اپنا آپ نہیں دکھایا تو مجھے کیسے دکھائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ لیکن یہ نور اتنا بڑا ہونے کے باوجود کہاں سما سکتا ہے؟ ایک بندہ مومن کے دل میں۔ آیت کا اگلا حصہ تھوڑا سا آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ آیتوں کو دیکھیں گے اور جو جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جائیں اس کو نوٹ کرتے جائیں گے تو غلطی نہیں کھائیں گے، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں بہت مغالطے لگ جاتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر کی گئی کہ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ بندہ مومن کا دل ہے، کہ اللہ کہاں ہے؟ نور ہے۔ اللہ کون ہے؟ نور ہے۔ اب اللہ کا یہ نور کہاں سما سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو زمین و آسمان میں نہ سما سکا وہ بندہ مومن کے دل میں سما گیا۔ تو یہاں سے مثال دے کے بتایا گیا کہ مثل نوری ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک مشکات جیسی ہے۔ مشکات کا لفظ شین کاف واو سے ہے۔ مشکات کہتے ہیں نش کو، جیسے پچھلے دور میں لوگ ایسی تاکچے بنا لیتے تھے، دیوار کے اندر ہلکی سی جگہ بنا کے اس کے اندر ایک چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو مشکات کہتے تھے۔ آج بھی ایک بہت معروف کتاب ہے حدیث کی، مشکات المصابیح، اس کے اندر مختلف احادیث کو جمع کیا گیا ہے مختلف کتابوں سے لے کر، تو یہ وہی لفظ ہے۔ فرمایا کہ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال جو ہے وہ مشکات کی طرح ہے۔ امیجن کریں کوئی دیوار ہے اور اس کے اندر یوں ایک ہلکی جھری سی بنی ہوئی ہے۔ کوئی شاید پچھلے دور کا منظر آپ کے ذہنوں میں ہو کسی جگہ، اگر آپ نے دیکھا ہو के दीवारों के अंदर जगह बना देते थे और उसमें फिर चिराग जलाए जाते थे ताकि हवा आए तो वो उसको ना लगे। चलिए अब इसको सोच लिया। अब इस मिशकात के बाद आगे क्या है? मसलु नूर ही का मिशकात, इसके नूर की मिसाल एक मिशकात की तरह। फीहा मिसबाहुन, इसके अंदर एक चिराग है। वो मिसबाह क्या है? चिराग है। अल मिसबाहु फी जुजाजा, और जो चिराग है वो शीशे की कंदील के बीच में, यानी जिसके चारों तरफ शीशा है। इमेजिन करें, बंदा मोमिन का जो दिल है ना, जो जिस्म है, जिसको आप रिब्स कह सकते हैं, पसलियां, ये एक मिशकात की तरह। फीहा मिसबाख, उसके अंदर चिराग है। चिराग क्या है? बंदा मोमिन के दिल के अंदर ईमान की रोशनी। अल मिसबाख फी जुजाजा, जुजाजा क्या है? बंदा मोमिन का दिल। पहले जिस्म का स्केल्टन होता है, फिर बीच में दिल होता है, और उसके अंदर एक चिराग जल रहा होता है। और जुजाजा कैसा है? अज़ुजाजा तुका नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन। वो जो शीशे का फानूस है या उसके जुजाजा है, वो बिल्कुल इस तरह है जैसे एक चमकता हुआ सितारा। मोमिन का दिल साफ शफाफ शीशे की तरह होता है, और उसके अंदर ईमान की जो हरारत आती है और जो रोशनी आती है, वो कहाँ से मिलती है उसको? एक तेल से मिलती है। तेल क्या है यहाँ? जैतून का तेल। लेकिन इस मिसाल को अगर साथ साथ लेते जाएं तो ये है इल्म का तेल, वही इलाही के साथ इंसान के ताल्लुक के जुड़ने का तेल। अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक बंदा है मोमिन का दिल शीशे की तरह साफ होता है, और जब दिल का आईना साफ होगा, रोशन होगा, तो उसके अंदर अल्लाह ताला का नूर आता है। जैतून के तेल से मुराद यहाँ क्या है कि जिस तरह जैतून का तेल बहुत प्योर होता है, खुद ब खुद जल जाता है, इसको निचोड़ना नहीं पड़ता, इसी तरह हर बंदा मोमिन के दिल में इल्म की तलब होती है। वो फितरी तौर पर तौहीद पर होता है, और ला शर्कियत वला गर्बिया, कोई तासुब नहीं होता, वो मशरकी या मगरबी नहीं होता। मशरक में जाए तो उसका एक रंग और मगरब में जाए तो उसका दूसरा रंग, ऐसा नहीं होता। वो मशरक और मगरब का फ़र्क करके कुछ चीज़ों को जायज़ और कुछ को नाजायज़ करार नहीं दे लेता कि अब मशरक में होऊंगा तो फिर ये काम कर लूँगा, और मगरब में जाऊँगा तो फिर ये करना तो मेरे लिए आसान है और इस तरह से करना होगा। नहीं, मोमिन जहद से पाक होता है, वो हर जगह, वो ज़मीन पर चलता है तो अल्लाह का नुमाइंदा बन के चलता है, और उसको बिल्कुल इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि वो हर जगह अल्लाह का बंदा बन के रहे। अब ये तो था बंदे के दिल के अंदर वो नूर जो अल्लाह ने दिया, और ये वही चीज़ है जिसको अल्लाह के नबी सल्लम की एक सही रिवायत से हम पीछे बहुत दफ़ा सुन चुके कि कुल मौलूदें यू लदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप इसको फितरत के तकाजों से हटाकर गलत रास्तों पर डाल देते हैं। इस फितरत से मुराद क्या है? नूरे हिदायत। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो ये नूरे फितरत साथ लेके पैदा होता है। अब हुआ क्या? यकाद ज़ैतुहा युदीउ, करीब है कि उसका तेल जल उठे। वलौ लम तमसस्हु नार, और अगरचे उसको आग ना छुए। यानी बंदा मोमिन के अंदर हिदायत की इतनी तलब और इतनी तड़प होती है कि अगर उसको बाहर से कोई अच्छा माहौल भी ना मिले, कोई उस्ताद ना मिले, कोई मदरसा उसको ना मिले, कोई नेक साथी ना मिले, लेकिन फितरतन वो बड़ा नेक होता है। एक बच्चे को किसी जंगल में भी छोड़ के आ जाए तो वो बच्चा फितरत की रहनुमाई में ही अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नूर फितरत तो पहले से मौजूद ही था, ऊपर से मिल गया नूर वही, वही का सिलसिला जुड़ गया, क़ुरान से जुड़ गया, हदीस से जुड़ गया, अल्लाह के नबी का साथी बन गया, या किसी भी दौर में उसको अल्लाह ताला ने नेकी की तौफीक दी, तो ये कैफियत है नूरुन अला नूर, रोशनी पे रोशनी। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा। बंदा मोमिन पैदा फितरत पर होता है, फिर उसके बाद उसको अच्छा माहौल मिल गया, ये नूरुन अला नूर है। घर वाले भी मुसलमान थे, वो मुश्किलात नहीं सहनी पड़ी दीन के रास्ते में जो दूसरों को सहनी पड़ी। फिर इसी तरह एक बंदा मोमिन मुसलमान घर में तो पैदा हुआ, लेकिन बा अमल मुसलमानों के घर पैदा हुआ, ये फिर नूरुन अला नूर हुआ। फिर एक बंदा है मोमिन ज़रा सा शऊर के वाला बच्चा हुआ तो उसको ख़ुद कुरान मिल गया, इस्लाम मिल गया, तालीम मिल गई, इल्म का तेल मिल गया, तो अब तो उसका हाल क्या है कि नूरुन अला नूर, हर तरफ से चमकता हुआ दिखता है। हर मामले में उसके चमक ही चमक है। उसके अखलाक अच्छे, उसके किरदार अच्छा, उसके मामलात अच्छे। वो सिर्फ एक रटी रटाई नेकी को नेकी नहीं कहता, बल्कि उसकी ज़िंदगी सारी नेकियों का मजमुआ होती है। और ऐसा शख्स जो है वो हकीकत में फिर दुनिया के अंदर रोशनियाँ फैलाने वाला होता है। नूर उन अला नूर का ये भी मफहूम है कि पहले तो खुद ही चमक रहा था, पहले खुद अमल किए, पहले खुद सीखा, अब दूसरों को चमकाने लगा, माहौल को बदलने लगा। सोने पे सुहागा, इसकी तो क्या कहने की बात है, इसका तो क्या हाल है, कैसे अल्लाह ताला इसको चमकाता है। और ये नूर किसको मिलता है? यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है जिसकी चाहे, यानी जिसको अल्लाह चाहे अपने इस नूर की तरफ बुला लेता है। नूरे हिदायत मुराद है इधर। और ये मिसाल दे के क्या कहा, व यद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, अल्लाह मिसालें लोगों के लिए बयान फरमाते हैं। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और अल्लाह ताला को खूब इल्म है, अल्लाह ताला को खूब पता है कि मिसालों से बात कैसे समझाई जाती है। और अल्लाह को ये भी पता है कि कौन इस नेमत नूर का मुस्तहक है, किसको नूरे हक की सच्ची तलब है, और कौन देखते दिखाते सुने सुनाए में आके नूर की तलब में आ गया। कौन है जो दुनियावी अगराज और मकासद के लिए नूर का सफ़र तय कर रहा है, और कौन है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया की ज़रूरियात को चलाते हुए इसको पूरा करता है, ये अल्लाह को पता है। यहाँ पे आप देखिए कि आयत एक हल्के से खुलासे के साथ पूरी होती है। हम अब थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। यहाँ एक दो लफ्ज़ों के रूट वर्ड्स लिख लें। मिशकात का तो मैंने आपको लिखा दिया, शीन काफ वाव, थोड़ा सा कम बोला जाने वाला लफ्ज़ है। इसी तरह फिर एक लफ्ज़ हमने इसमें देखा, कौकब। कौकब जो है ये रुबाई है, काफ वाव काफ बा, कौकबुन सितारे को कहते हैं। फिर दुर्रीयुन का लफ्ज़ देखिए, दाल रा हमज़ा, चमकता हुआ। अल्लाह के नबी का एक लकब आपने कभी सुना होगा, दुर्रे यतीम। तो दुर्रीयुन के दो रूट हैं, दाल रा भी है और दाल रा हमज़ा भी है। अगर दाल रा हो तो इसका मानी होता है चमकदार, शाइनी के मानों में, और अगर दाल रा हमज़ा हो तो फिर दूर करना, हटाना। चमक भी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो फिर उस जगह से हटने लगती है। और इसी तरह सितारा अंधेरों को दूर करता है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इतने प्यारे तरीके से एक मोमिन के दिल के अंदर मौजे मारने वाले इत्मीनान, सुकून और खुशियाँ को यहाँ तذکرہ कर दिया कि अल्लाह ताला का नूर एक बंदे मोमिन के दिल में आता है तो उसका हाल क्या हो जाता है, बस उसकी ज़िंदगी तो नूर से भर जाती है। हज़रत उबई बिन कार इस आयत की तफसीर में कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये किसकी बात हो रही है, यानी मसल नूर ही की मिशका मिशकात, तो ये किसके नूर की बात है, तो वो कहते हैं कि ये मिसाल उस मोमिन की है। अपने आप को साथ साथ चेक किया करें, और ये बातें सुनते वक्त आपके चेहरे से पता चलना चाहिए कि आपके अंदर उतर रहा है। कहा कि ये मिसाल उस मोमिन की है जिसके दिल में अल्लाह ने ईमान और कुरान का नूर हिदायत डाल दिया है। इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर की बात की कि अल्लाह नूरु समावात, फिर कल्ब मोमिन के नूर का जिक्र किया कि अल्लाह का ये नूर एक मोमिन के दिल के अंदर रहता है। बास कहते हैं मसल नूर ही की बजाय मसल नूर मन आमन बिही भी है इसकी एक इरत, कि जो उस पर ईमान ले आता है फिर उसके नूर का क्या हाल होता है। हम अपने दिलों का जायज़ा लेके देखें, हमारे दिलों में क्या अल्लाह का ये नूर आ चुका, क्या हकीकत में हमें ये महसूस होने लगा कि अल्लाह की ज़ात जो है उसने हमारे दिलों के अंदर रोशनी डाल दी है। देखिए कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका दिल रोशन होता है। जब दिल रोशन होता है तो आपको चेहरे, हाथों और दूसरी चीज़ों की तो इतनी ज़्यादा फिक्र ही नहीं रहती। बस लोगों ने शायद से खलूल और न जाने क्या कुछ अखज़ किया। कभी आपने सुना होगा अंदर तू, बाहर तू, सामने तू, पीछे तू, यानी तसव्वुफ के नाम पर हलूल का एक नज़रिया होता है। और वो क्या है कि आप एक ख़ास अरसे तक कुछ ख़ास किस्म की इबादत जब कर लेते हैं तो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल में आ जाता है। वो कहते हैं अंदर अल्लाह बैठा हुआ है। बाज़ लोग फिर इतने ज़्यादा इन चीज़ों पे क्यूरियस हो जाते हैं कि दुनियावी जिस्मानी तकाज़ों से अपने आप को दूर कर लेते हैं, दुरुस्त तरीका नहीं है। यहाँ एक जुमला लिख लें, अल्लाह ताला अपने वजूद के साथ साथ में आसमान पर है, वजूद के साथ, जैसे मेरा और आपका ये वजूद है, अल्लाह का वजूद है, हकीकत है। एक मौके पे अबू जाहल ने भी पूछा था अल्लाह के नबी से कि बता तेरा खुदा किस चीज़ का बना हुआ है, पीतल कह के, सोने कह के, चांदी कह। उसने तो कयास किया था अपने बुतों पे कि हमारे बुत इन चीज़ों से बने हुए हैं, तो शायद अल्लाह भी ऐसा होगा। तो उस पे उसके मुतालबे पे सूरत नाजिल हुई थी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। तो लिहाजा अपने वजूद के साथ अल्लाह ताला सातवें आसमान पे है, लेकिन अपनी सिफात यानी बसारत, समात, इल्म, मदद, नुसरत, इन सारी चीज़ों के साथ अल्लाह ताला हर जगह। हमारे यहाँ एक जुमला बहुत केयरलेसली बोला जाता है कि जी अल्लाह ताला तो हर जगह, हम कहते हैं ना अल्लाह जी हर जगह। कैसे है अल्लाह हर जगह? अपनी सिफात के साथ। हाँ, अल्लाह हर जगह होने वाली चीज़ों को देख रहा है। आप कह सकते हैं कि अल्लाह हर जगह अल बसीर है, हर जगह समी है, अल्लाह ताला हर जगह अन नसीर है, लेकिन वजूद के साथ वो वहाँ मौजूद है। वरना आप देखिए कि अगर आप हर जगह बंदे को कहें जी तेरे साथ भी अल्लाह, मेरे साथ भी अल्लाह, तो जब हम गुनाह करते हैं तो नौज़ बिल्ला अल्लाह हमारे साथ करता है। हम जब टॉयलेट में जाते हैं या कोई शौहर बीवी के साथ होता है तो उस वक़्त नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला उसके अंदर होता है। गलत बात है, इससे बहुत सारा शिर्क फैल जाता है। और ऐसी आयात को तफसीर करते हुए इसलिए बहुत ज़्यादा डर लगता है, दिल इंसान का हाथ में और मुट्ठी में आ जाता है कि अल्लाह कोई बात ऐसी ना कहलवाना कि सिर्फ जुबान का चस्का ही हो जाए और बात अच्छी लगे, लेकिन वैसी ना हो जो तू कह रहा है और जैसा तू है। अब आप देखिए कि अगर आप मोमिन के दिल को देखिए कि उसके अंदर एक शम्मा जो रोशन होती है नूर की, तो बिल्कुल आप इंसानी वजूद को देखें, कभी आप किसी डॉक्टर की शॉप पे जाके देखें तो बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे होते हैं, रिब्स होती हैं बाहर जो पसलियों का एक स्केल्टन होता है, फिर उसके अंदर एक दिल होता है, फिर दिल के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जहाँ धड़कन होती है। बिल्कुल इंसान का हाल यही होता है, इंसान एक मिशकात की तरह। अब आप सोचिए कि बंदे के दिल में अल्लाह की ये मोहब्बत आती कैसे है और कब आती है, इसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है। ईमान जो है ना शुरू में एक टिमटमाता हुआ चिराग होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। पहले इंसान का दिल रोशन होता है, फिर होते होते ये रोशनी उसके सर से पाँव तक आती है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरे सर से पाँव तक एक उंगली पर भी अल्लाह के सिवा किसी और का हुक्म नाफिज हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। एक दफ़ा दुआ करें दिल में नूर आ जाए, हमारे दिल खुल जाए, हमारे दिल के अंदर जज्बियत आ जाए, शरह सदर हो जाए। जब दिल में अल्लाह का दीन आ गया, अल्लाह की मोहब्बत आ गई, आपको कभी परवाह नहीं लगेगी कि आप दकियानूसी लगते हैं इस हुलिये में, कि आप पेंडू लगते हैं, कि आप बड़े लगते हैं, कि आप छोटे लगते हैं, आप कौन से लगते हैं। जिन लोगों को अल्लाह के हुक्मों को मानना मुश्किल लगता है, उनका हाल क्या है कि उनके दिलों में अभी ये नूर नहीं आया। अब देखिए कि दुनिया में सबसे पहला चिराग जो जला था वो किसके दिल में जला होगा? आज के दौर के मुसलमानों के नाते से वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। वही इलाही की सूरत में इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ईमान का एक चिराग रोशन हुआ। होते होते इस रोशनी से फिर क्या हुआ, दूसरे चिराग जलते गए, अबू बकर का चिराग, फिर हज़रत खदीजा का दिल का चिराग जला, और होते होते आप देखिए कि एक छोटी सी बस्ती आबाद हो गई मक्का की। ठीक है, दबे हुए थे, ईमान सच्चा था उनमें। आप कहते हैं कि फिर मक्का में ईमान वाले इतने जो आ चुके थे तो फिर क्यों रोशनी ना बनी? इसलिए कि आपका मुशाहिदा होगा कि किसी भी चीज़ के रोशन होने या उसके ज़रिए से रोशनी होने की एक वजह तो ये होती है कि वो चीज़ रोशन हो, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसके ऊपर कोई कपड़ा ना डाल दें। बस अगर इस लाइट के ऊपर हम काले रंग का कपड़ा डाल देंगे तो लाइट नहीं रहेगी ना, हमें नहीं दिखेगी। बिल्कुल इसी तरह से मक्का के अंदर ईमान वाले मौजूद थे, छोटे छोटे चिराग जल चुके थे, लेकिन अभी माहौल खुशगवार नहीं था, अभी धुंध छाई हुई थी। कहीं शक की धुंध थी, कहीं इल्ज़ामात की धुंध थी, कहीं लोगों को मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के हालात चाहिए थे, इसलिए ये चिराग छोटे छोटे दबे रहे। लेकिन मदीना में आते ही फिर ऐसे लगा कि एक बहार आ गई। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को निखारा कि वो छोटे छोटे चिराग मिलकर एक बहुत बड़ी रोशनी का सबब बन गए।